प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादे गौरा भक्तावरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादे गौरा भक्तावरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा रामा हरे 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 कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप लोग नहीं बोलेंगे जोर से गाना कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद हरे राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद हरे राधे सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंच तत्व दौड़ताय की पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय निताय गौर हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो आज है हमारा स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक संख्या है 7 6 और 7 6 में तात्पर्य नहीं दिया श्रील प्रभुपाद ने इसलिए हम 7 को पढ़ेंगे 6 में पढ़ता हूँ आपके लिए। तमासीनम अकर्मणाम तत्वमार्गदर्शनम् स्वासुतम देवहूति आह धातु संस्मृति वचः। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे, अतः वे कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। तो यहाँ पर देवहूति माता अपने पुत्र कपिल से प्रश्न पूछ रही हैं। भक्ति योग की महिमा इस अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर चर्चा है भक्ति योग की। तो अब हम सब साथ में इसको दोहरा सकते हैं। देवहूतिर उवाच देवहूतिर उवाच निर्विणानितराम भूमन असत इंद्रिया दर्शनान येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना अधम तमः प्रभु। देवोतिर्वाच निर्विणा नितरं भूमन असत इंद्रिया दर्शनान येन संभावयमानेन प्रपन्ना अंधम तमः प्रभु। देवोतिर्वाच निर्विणानितरां भूमन असत इंद्रिया दर्शनान येन संभावयमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभु।
देवोतेर वाच तो इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे सब साथ में। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फल स्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तात्पर्य बहस दिवाइन श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर असत इंद्रिय तर्षणात शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असत इंद्रिया तर्षणात का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियां के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलतः इस कलुषित से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कलमश पूर्णता दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सद इंद्रियों को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकल्पों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकल्प कलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्र तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई इंद्र तृप्ति से ऊब नहीं जाता तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा है कि वे ऊब गई हैं, क्योंकि अब उनके पति ने ग्रह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेश को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। ओम अज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत एक अमलम पुराण ग्रंथ, इस पर तात्पर्य दिए श्रील प्रभुपाद जी ने और उस पर व्याख्यान करने के लिए सभी भक्तों को प्रेरणा दी। तो मैं प्रयास करूंगा, अपनी अयोग्यता से इसको बोलने का प्रयास करूंगा और आशीर्वाद चाहूंगा सभी वरिष्ठ वैष्णवजनों का। प्रभु जी हैं यहाँ पर, आशीर्वाद देंगे और अगर कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। देवहूतिर उवाच। देवहूति ने कहा, निर्गणाम नितराम उबी हुई हूं अत्यधिक भूमन असत इंद्रिया, हे भगवान क्षणिक इंद्रियों से। तो यहां पर देवहूति कह रही हैं, मैं अपनी क्षणिक इंद्रियों से उबी हुई हूं। तो दो प्रकार की इंद्रियां हैं हमारी, एक तो सत इंद्रिया और एक असत इंद्रिया। देखें, ज्यादातर शिल प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, व्यक्ति सोचता है कि जो ये मेरी आंखें हैं इन्हीं से मैं देखता हूं, पर सच्चाई ये है ये असत इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं ना, आंख नाक मुंह कान त्वचा, ये भी इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं और 5 भौतिक शरीर। इस प्रकार से ये 20 तत्व और 4 तत्व सूक्ष्म रूप में, मन बुद्धि अहंकार और 3 गुण, 24 तत्व और 25वां तत्व आत्मा जो हम हैं। इस प्रकार से 24 तत्व का ये जो आवरण है, इसके अंदर सच्चाई ये है कि ये तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि इस शरीर का एक नाम है मरण धर्म, है ना। मरण धर्म नाम है इसका, डेली डेली मर रहा है ना, एक एक दिन पुराने होते जा रहे हैं और एक दिन होता है कि मृत्यु आ गई। तो लोग बोलते हैं कि मृत्यु को टाला जा सकता है, मृत्यु को नहीं टाला जा सकता है। तो उसमें कई भक्त ये वर्णन करते हैं कि किसी भी एक उत्पादक पदार्थ है, प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है कि नहीं, एक्सपायरी डेट उसी दिन लिखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि सेल बढ़ गई है तो एक्सपायरी डेट चेंज कर दी, या कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया है तो उसकी एक्सपायरी डेट चेंज कर दी जाए। बोले नहीं, अभी तो ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसकी एक्सपायरी डेट लॉन्ग एक्सपायरी डेट कर दो। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन ही उस व्यक्ति की मृत्यु का दिवस लिख दिया गया, चाहे वो उस जीवन में अपनी असत इंद्रियों में लिप्त है या अपनी सत इंद्रियों को समझ पा रहा है। तो जब ये शरीर छोड़कर आत्मा हम बाहर निकलते हैं, तो व्यक्ति अपनी आत्मा जो वो खुद है, वो अपने इस मृत शरीर को देख पाता है, देख रहा है। तो कैसे देख रहा है ना, लोग बोलते आत्मा देख पा रही है। कैसे देख पा रही है, क्योंकि आत्मा की आंख है, आत्मा के कान है, वो सुन पा रही है, आत्मा की नाक है, आत्मा का मुख है, आत्मा के सब कुछ, जितने भी इंद्रियों का हम चर्चा कर रहे हैं वो सब इंद्रियां उसके अंदर है। परंतु वो सब किसके अंदर है, ऊपर एक आवरण है सच चित आनंद, बस इसी के अंदर सारी इंद्रियां हैं, अलग से नहीं है, सब इसी के अंदर सच चित आनंद विग्रह के अंदर सब कुछ है। और हम जब उस भगवत धाम से इस संसार में आते हैं तो अपने आप को बड़ा सूक्ष्म जीन हीन होता है ना, ऐसे आदमी छोटा हो जाता है। श्री आत्मा बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा बन जाते हैं, हम बहुत छोटे हो जाते हैं, छोटी सोच का व्यक्ति है, छोटा हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी असत इंद्रियों को त्याग करके और सत इंद्रियों में लिप्त होता है कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जिस दिन उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा, तो फिर क्या होता है कि जब वो भगवान के धाम में जाता है तो वो आत्मा विशेष अपना पुनः पुनः शरीर प्राप्त कर लेती है, दिव्य शरीर प्राप्त कर लेती है जैसा वो था। तो कहते हैं कि इस भगवत धाम में जाने के लिए एक बहुत छोटा गेट लगाया गया है, जिस गेट में से झुक करके जाना पड़ता है। क्या मतलब झुक करके जाने का मतलब, जिस व्यक्ति ने झुकना नहीं सीखा होगा वो व्यक्ति कभी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। आदमी कहे नहीं नहीं, हमने तो रीढ़ की हड्डी में स्टील का रॉड डलवा रखा है, हम झुकेंगे नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसे बोलते हैं। बोले ठीक है, आप अभी मत झुकाइए, एक दिन बाद आपका सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो पुनः आपको शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। और लंबी रीढ़ की हड्डी का कौन होता है, कुत्ता होता है, वो सीधी हड्डी होती है ना, बेचारा मोड़ नहीं सकता अपने ऐसे करके, तो रीढ़ की हड्डी ऐसे, या फिर कोई जानवर बैल आदि बिल्कुल सीधी हड्डी रहेगी, ऐसा जानवर प्राप्त करना पड़ेगा उसको शरीर। इसलिए अच्छा है कि आज हम झुकना सीखें। जर्मन में एक वर्ड आता है ह्यूमस, जो ग्रीक वर्ड है ये ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है सॉयल, मिट्टी। मिट्टी का मतलब अगर हम अपने इंग्लिश भाषा में देखें, ह्यूमस शब्द से आती है ह्यूमिलिटी, और मिट्टी मतलब ह्यूमस मतलब मिट्टी, तो ह्यूमिलिटी की जो मिट्टी है उसी में हम बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। मिल तो गया बीज, उगाओगे किसमें, मिट्टी होनी चाहिए। तो वो ह्यूमस जो ये शब्द है ग्रीक मिट्टी, उसके अंदर ये बीज आरोपित किया जाता है, जिसका मतलब है विनम्रता की मिट्टी के अंदर। व्यक्ति में विनम्रता नहीं है, गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, और उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, तो कभी वो व्यक्ति अपनी बाहर की इंद्रियों से सत इंद्रियों की ओर मुड़ नहीं पाएगा। तो मुड़े कैसे, मुड़े कैसे, इसको मोड़ने के लिए अम्बरीश महाराज का बहुत सुंदर उदाहरण मैं पढ़ रहा था इसके अंदर, कि अम्बरीश महाराज किस प्रकार से अपनी एक एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जैसे हमको लगाना चाहिए। कैसे लगाते हैं, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वाचाम सी वे खुंट गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुत्रिम चक्रारच्युत सत्कथा उदय। हर इंद्री भगवान की सेवा में है, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, मन कहाँ है, सदा भगवान के चरणों में। लेकिन हमारा मन सदा भगवान के चरणों में नहीं रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है, कभी मोबाइल के मैसेज में मन चला जाता है, जप करते वक्त भी मेरा मन तो बहुत भागता है, तो उस मन को पकड़ने के लिए सबसे उत्तम है श्री राधा गोविंद भगवान की जय, जगन्नाथ श्री सीताराम लक्ष्मण गौर की जय। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, निस्संदेह निस्संदेह बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है, जिसका मन कृष्ण के दोनों चरण कमल में रहेगा वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक समय पे सत इंद्रियों की ओर उन्मुख हो पाएगा। सत इंद्रियों की ओर उन्मुख नहीं हो पाता है, हमेशा असत इंद्रियों में लगा रहता है। अगर ये इंद्रियां असली हैं, तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती, हम निकल जाते हैं, तो डेड बॉडी क्यों नहीं देख पाती है, क्यों नहीं मुस्कुरा पाती है, क्यों नहीं रो पाती है, क्योंकि जितनी भी फीलिंग्स हैं ये सारी हमारी मतलब आत्मा की हैं, शरीर का कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा जीवन इसी को मानते रहते हैं। तो मन हमेशा कृष्ण के चरणों में रखना है ना। और वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं ये किसमें इस्तेमाल होने चाहिए, कृष्ण का गुण वर्णन करने के लिए। कई व्यक्तियों से बोलो थोड़ा भगवान के बारे में बताइए, कभी कभी ग्रुप क्लास होता है तो बोलते हैं जरा प्रभु जी बोलिए भगवान के बारे में, प्रभु जी प्रिपरेशन नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं किया। भगवान कृष्ण का भक्त को कृष्ण का गुणानुवर्णन करने के लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता है, कोई विशेष आप क्लास देने जा रहे हैं कहीं नहीं तो समझ में आता है, लेकिन कृष्ण का वर्णन करने के लिए अगर दो शब्द कहने हो तो क्या इसके लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता। बोले प्रभु जी कुछ पढ़ा नहीं हुआ, अभी कल कुछ नहीं पढ़ पाया था, परसों कुछ नहीं पढ़, पूरा जीवन तो पढ़ा है। ये व्यक्ति वही है वो वर्णन नहीं कर पा रहा जिसने कभी भगवान के शब्दों को आध्यात्मिक रूप से अपने हृदय में प्रवेश ही नहीं कराया। और ऐसा व्यक्ति इस संसार के शब्दों को बहुत ही, किसी का गुण गाना हो, पॉलिटिक्स की बातें करनी हो, तुरंत नए न्यूज़पेपर दो दिन ना पढ़ा हो तुरंत उसके मुख से वो बातें निकलती हैं, मंदिर में क्या हो रहा है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कौन गलत है कौन सही है, ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, ये सब चर्चा के लिए हमारा गुणान वर्णन चलता है, लेकिन कृष्ण गुणान वर्णन करने के लिए शब्द मिलते नहीं, ढूंढने पड़ते कहाँ गए शब्द, खोजने पड़ते, लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब हम गुणान वर्णन करते हैं। करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, ये हाथ जो है एक इसमें इस्तेमाल होने चाहिए मंदिर का मार्जन करने के लिए। और किसी भक्त को झाड़ू लगाने की सेवा दे दो तो बोलेगा कि प्रभु जी क्या सेवा दे दी आपने, या बर्तन मांजने की सेवा दे दो भगवान के तो बोलेगा ये कैसी सेवा दे दी, मुझे तो अभी जाना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, प्रीचिंग करने जाऊंगा मैं ये नहीं कर सकता हूं। लेकिन वो प्रचार भी तभी कर सकता है जब वो श्रद्धावान व्यक्ति अपने हाथों से भगवान के मंदिर को मन का मंदिर मान रहा है। मंदिर मतलब मन के अंदर जो भगवान रहते हैं उनका घर, ये मंदिर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो कभी उसके हाथ से भगवान का ना तो पुस्तक जाएगी ना वो किसी का जीवन परिवर्तित कर पाएगा, क्योंकि पहले कर उपकार फिर परोपकार, पहले खुद अपना जीवन सार्थक करो। महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते जन्म ले ले भगवान जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करो, भक्त बनो, उसके बाद में प्रचार करोगे तो अपने आप लोग आपके आचरण को देख करके पुस्तक ले लेंगे, आचरण को देख करके प्रचार हो जाएगा। लोग पूछेंगे आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं, आपने तो कभी हमें कुछ कहा ही नहीं कि ये ले लो या नहीं ले लो, आपने इतनी सुंदर कथा बनाई कि ये सारा कुछ जो है वो भगवान का है, भगवान को दे दो, ये बताया। अब वो व्यक्ति खुद ही बोलेगा मैं देना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी भक्ति भावना उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम जीवन में कई लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक श्रवण, ध्यान पूर्वक कीर्तन, मंदिर की सेवा, गुरु के प्रति शरणागति, फिर देखो बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। ना ही किसी व्यक्ति के कोई कोर्स करने से, सेमिनार करने से परिवर्तन नहीं आते हैं, वो हम करते हैं जब गुरु का आदेश होता है, हमारे अथॉरिटीज का आदेश होता है आप करो, तो व्यक्ति करता है ताकि वो और सुंदर तरीके से भगवान की सेवा कर सके। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे नहीं मैं तो जाकर के ना ऑनलाइन कोर्स कर लूंगा, कोर्स करके फिर मैं ज्ञानी बन जाऊंगा और फिर मैं एक अच्छा भक्त बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। एक बार हलधर महाराज एक सुंदर कथा सुना रहे थे, हलधर महाराज वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम था रामदास, और वो तुकाराम और उन महाराष्ट्री संतों के समकालीन संत थे। तो रामदास जी जो थे उनके अनेकों पांडित्यपूर्ण शिष्य थे, बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का व्याख्यान करते थे और हर कक्षा में आते थे, उनकी सब ध्यान पूर्वक नोट्स बनाना सारा ध्यान से पढ़ते थे। लेकिन एक उनके भक्त थे जो गंवार थे, बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, उनका नाम था कल्याण दास। और कल्याण दास की एक ही सेवा थी, पानी भर के लाना है, भगवान की सेवा करनी है। थोड़ा सा गुरु जी के लिए पानी लाते थे, थोड़ा ठाकुर जी के लिए पानी लाते थे, और ऐसे कल्याण दास रात दिन सेवा करते रहे। और सभी लोग कहते थे गुरु जी आप इस कल्याण दास रूपी गवार से क्यों इतना प्रेम करते हैं, इसे ना तो शास्त्र आते हैं, ना ये शास्त्र पढ़ता है, ना शास्त्र सुनता है। तो उन्होंने कहा कि देखो वो ध्यान पूर्वक मेरा सेवक है, जो मैं कहता हूं वो करता है, ध्यान से जप करता है, जप करने के बाद में जो उसकी सेवा है वो ध्यान पूर्वक अपनी सेवा करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि गुरु जी इसको इतना अधिक प्रेम क्यों करते हैं। तो एक दिन बहुत सुंदर कक्षा में शिक्षा देने के लिए रामदास जी ने प्रश्न पूछ लिया कि कोई व्यक्ति इस श्लोक के अंदर अपना व्याख्यान प्रकट कर सकता है कि ये श्लोक क्या कहने का चाहता है। तो सारे लोग बोले गुरु जी आपने श्लोक तो सिखाया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सिखाया नहीं, लेकिन आपने तो इतने सालों से संस्कृत पढ़ा, इतने सालों से श्लोकों की व्याख्यान सुनी, अनुवाद हिंदी में लिखा, सोचिए क्या कहना चाहता है। तो सब चुप रहे, बोले गुरु जी नहीं कह पाएंगे। तो देखा इधर से कल्याण दास मटका लेके आ रहे हैं, कल्याण दास इधर आओ। जी गुरु जी। कहा मैं एक श्लोक पढ़ता हूं, इसका हिंदी अनुवाद ये है, सुनो और बताओ इससे क्या तात्पर्य है। तो सारे हंसने लगे, ये बताएंगे व्याख्यान, हम नहीं बता पाए तो ये बताएंगे। तो कल्याण दास जो थे उनसे पूछा गया, तो कल्याण दास कहते हैं गुरु जी मैं अयोग्य शिष्य हूं आपका, योग्य शिष्य नहीं हूं क्योंकि मैंने अधिक श्रवण कीर्तन नहीं किया है, परंतु ये आपका आदेश है कि मैं व्याख्यान करूं तो अभी मैं व्याख्यान करता हूं। उन्होंने 20 से 25 मिनट तक उस श्लोक पर व्याख्यान किया। क्यों कर पाए ऐसा? क्योंकि गुरु के प्रति शरणागति थी, है ना। श्रील प्रभुपाद सभी के प्राथमिक शिक्षा गुरु हैं, और अगर किसी ने दीक्षा लिया है तो उनके दीक्षा गुरु, उनके प्राथमिक शिक्षा गुरु हैं। अगर गुरु के आदेशों के प्रति व्यक्ति की शरणागति ना हो तो व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा ज्ञानी हो जाए, बहुत बड़ा वो शास्त्रों का उल्लेख करने लग जाए, लेकिन उसका जीवन पर भी परिवर्तन नहीं होगा और वो कभी किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति शरणागत नहीं है। तो ये गुरु के प्रति शरणागत, परंपरा के प्रति शरणागत होना बहुत मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो उसका जीवन पार हो जाएगा, उसको अधिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत क्या है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है, जैसे रामानुजा संप्रदाय का सिद्धांत है श्री भाष्य, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है भागवत भाष्य, भागवत पुराण। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं जो भजन आता है, धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौर चंद्रा, है ना, उसके अंदर आता है भक्ति रस सुसा अस्वादना मध्यस्थे भागवत पुराण, मध्य में भागवत पुराण है। इसको छोड़कर के इधर उधर पुस्तक पढ़ना, ये टाइटल पढ़ लू, वो टाइटल, ये टाइटल, ये डेली का। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला सुबह सुबह एक श्लोक पे व्याख्यान, उच्च स्वर में सभी भक्त इस श्लोक का उच्चारण करें, कई बार सुनने से कान शुद्ध होंगे, हृदय शुद्ध होगा, उच्च स्वर में फिर कोई भक्त अनुवाद पढ़े, तात्पर्य पढ़े और अपनी समझ के अनुसार उसके ऊपर व्याख्यान करे। ये लिखा गया बहुत ही मध्यस्थ श्रीमद् भागवत पुराण, इसको छोड़कर के बहुत कुछ कर लिया और ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी जाने वाला नहीं। तो भागवत पुराण व्याख्यान ये है, गुरु के प्रति शरणागत मतलब उस व्यक्ति की इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी अगर वो गुरु के प्रति शरणागत है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना, जन्म जन्म गुरु से, जन्म जन्म से वही गुरु तत्व अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। तो गुरु तत्व बड़ा स्पेशल होता है, जैसे जीव तत्व हम सब, और हमारे सबसे प्रमुख जीव तत्व है ब्रह्मा जी, शिव तत्व और कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व है जो कृष्ण अनेकों रूपों में अपना विस्तार करते हैं, बलराम, चतुर्व्यूह विष्णु, नारायण, दुत्त चतुर्व्यूह विष्णु, संकर्षण, महाविष्णु, सदाशिव, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, राम, नरसिंह, वामन, विस्तार करते जा रहे हैं, एक कृष्ण तत्व चल रहा है। लेकिन कृष्ण तत्व और जीव तत्व के बीच में एक तत्व है स्पेशल, वो है शिव तत्व। तो शिव ना तो जीव है ना ही कृष्ण है, शिव तत्व स्पेशल तत्व। ऐसे ही गुरु जो है ना वो स्पेशल तत्व है, वो कोई जीव नहीं है साधारण मनुष्य जैसा। इसीलिए नाम अपराध में आता है, गुरु को साधारण मनुष्य मानना एक अपराध है, उनके आदेशों की अवहेलना कर देना। तो एक है जीव तत्व और एक है कृष्ण तत्व, इसके बीच में एक है दोनों को जोड़ने वाला गुरु तत्व। तो गुरु तत्व है एक अलग से, जैसे शक्ति तत्व है संविद शक्ति, संधनी शक्ति और हलादनी शक्ति, ये शक्ति तत्व, कई प्रकार के तत्व हैं। इसीलिए बोला गया, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं युवेति तत्पुतः त्याक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, वो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को जान जाएगा, वो ही जन्म कर्म को दिव्यता को जानेगा और फिर इस संसार में उसका पुनर्जन्म होगा। तो हम बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, कृष्ण को हजारों लोग जानते हैं, जाएंगे इधर उधर सब लोग जानते हैं, लेकिन तत्व से जानते नहीं है। वो सिर्फ इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से तत्व ज्ञान ले पा रहा है और दे पा रहा है। तो हमारे इस संस्था को, हम सब लोगों को बड़े ही प्राइड के साथ में, एक गर्वान्वित होते हुए सहन, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए वो ऐसा है, वो परंपरा अच्छी है, ये अच्छे हैं, हमारे अंदर ये कमियां, हमारे अंदर ये, सब अपनी अपनी कमियां ढूंढते हैं, प्रभु जी हमारे में ये कमियां, हमारे में ये कमियां। हमें ये सोचना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी है। ये तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और अगर गुरु के माध्यम से हम ज्ञान लेना चाहते हैं तो भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया, क्या श्लोक है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, पहले सेवा करो फिर क्या होगा, उपद्रक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शिना। जिन्होंने तत्व से समझा होगा वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, कैसे प्रदान करेंगे, सेवया, सेवया, गुरु की सेवा। सेवा किए बगैर ज्ञान आ जाए बहुत मुश्किल है, बुक्स पढ़ के ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आता है सेवा करने से। सेवा करने से, हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, सेवा करने से सत इंद्रियां जिनके ऊपर ये भौतिक आवरण है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, वो शुद्ध हो जाती हैं सेवा करने से। तो अभी हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे मंदिर द्वारका आए थे, तो महाराज ने कहा व्यक्ति के लिए दो आदेश हैं इस कौन संस्था में सेवा करने के लिए, पुस्तक वितरण, मंदिर निर्माण। इसके लिए करें वो हर एक कार्य, इसको जाकर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, मैं प्रचार करूंगा पुस्तक वितरण के लिए, मैं प्रचार करूंगा मंदिर बनाने के लिए, और इससे क्या होगा, बुक जाएगी जिसके घर में, पुस्तक जाएगी, एक ना एक दिन वो भी भक्त बनेगा, और मंदिर में कोई प्रवेश करेगा तो वो भक्त बनेगा, क्योंकि मंदिर का वातावरण एक सुचारू रूप से सत्वगुणी वातावरण, या फिर कह सकते तीनों गुणों से परे वैकुंठा जैसा वातावरण होता है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम गुरु को स्वयंपुर से समझें। तो कल्याणदास जो थे उनके प्रति रामदास को बहुत ही निष्ठा थी कि ये जो है ना सबसे ज्यादा मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन सारे लोग बोलते थे नहीं गुरु जी हम भी तो सेवा करते हैं, हम भी तो पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको कैसे मैं ये समझाऊं कि शरणागति का मतलब है तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करना। जैसे यहां देवहूति माता को अब कपिल भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए वो प्रश्न पूछ रही हैं, और अपने पति देव को जाने दिया उन्होंने, कर्दम मुनि को रोका नहीं। और जब वो जा रहे थे तो देवहूति माता के लिए कपिल भगवान ने कहा मैं ज्ञान प्रदान करूंगा अध्यात्मिकम विद्या नाम, मैं आध्यात्मिक विद्या प्रदान करूंगा अपनी माता को, पिताजी आप चिंता मत करिए। तो गुरु रूप में अपने पुत्र को स्वीकार कर रही हैं और गुरु के प्रति निष्ठावान, इसलिए देवहूतिर उवाचा, देवहूति उवाच कर रही हैं कि आप मुझे इस उबी हुए संसार से भक्तिमय ज्ञान प्रदान करिए। तो ये सरल नहीं है शरणागति। तो कल्याण दास की निष्ठा को प्रकट करने के लिए रामदास जी ने एक दिन अभिनय किया, अभिनय समझते हैं, नाटक, नाटक किया, नाटक करके कहते हैं कि मेरे को है ना एक पैर पे एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया है और इस फोड़े से मैं अभी कुछ ही दिनों में मरने वाला हूं। तो सारे बोले कि गुरुजी आप चले जाएंगे? हाँ। तो गुरुजी जब आप चले जाएंगे तो आपके बाद में कौन यहां पर देखेगा, मठाधीश कौन होगा इस मठ का? किसी ने ये नहीं बोला गुरुजी कैसे हो गया, कैसे ठीक कर सकते हैं, औषधि क्या है? पहले बोले जब मैं चला जाऊंगा, तो सारे शिष्य क्या बोले, गुरुजी आप अगर चले जाएंगे कुछ समय में तो फिर आपकी जगह पर कौन आएगा? तो मतलब जाने के लिए हम जानते हैं, आप जाइए, हम तैयार हैं आपके जगह आने के लिए, ये भावना है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं अरे अगर गुरु चले जाएंगे फिर क्या होगा, हम सोच भी कैसे सकते कि गुरु चले जाएंगे, गुरु कभी जाते नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं गुरु तत्व कभी मरता नहीं है, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को गुरु उनके आकर स्वप्न में आके कहते थे, जब वो गुरु पृथ्वी पर नहीं थे तब भी कहते थे मैं तुम्हें आदेश देता हूं जाओ प्रचार करने के लिए, लो सन्यास, बनो सन्यासी, करो प्रचार। इसका मतलब गुरु कहां गए, तो गुरु कहां जाते हैं? तो इस प्रकार से रामदास जी ने कहा कि देखो मेरे ना यहां बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि मुझे अभी कुछ कार्य अभी बाकी है मेरे, मुझे कुछ व्याख्यान करनी है, कुछ शिक्षाएं देनी है, तो मैं इसको बचा सकता हूं। तो कल्याण दास वहां खड़ा था और उसने पूछा गुरुजी कैसे बचा सकते हैं? कहा मुझे राम भगवान ने स्वप्न में आके कहा है कि अगर कोई तुम्हारा शिष्य इसको पी जाए, इस फोड़े के मवाद को, तो वो शिष्य के प्राण चले जाएंगे तुम्हारी जगह और तुम जो हो बच जाओगे आगे शिक्षाएं देने के लिए। तो सब बोले कि गुरुजी अगर हम पी लें और हम मर जाएं तो गुरुजी आपकी आगे परंपरा को प्रचार कौन करेगा, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, हम जवान हैं, हमें तो अभी 30 साल प्रचार करना है, आप 1 साल 2 साल कर पाओगे? एक ना एक समय जातस ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया गुरुजी एक दिन तो मरना ही, उन्हीं का ज्ञान उन्हीं को सुना रहे फिलोसफी। तो गुरुजी एक दिन तो मरना ही है, तो आप चले ही जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो कई लोग अलग अलग व्याख्यान के बोले गुरुजी हम प्रचार करना चाहते हैं, और सब में कंपटीशन हो गया। गुरुजी बोले ठीक है एक प्रचार कर लेगा दूसरा पी ले। तो बोले कि नहीं ये मुझसे अच्छा नहीं कथा करता, इसको लेक्चर देना नहीं आता, मुझको आता ज्यादा अच्छा आता है। गुरुजी पुस्तक वितरण कम करता है, मैं ज्यादा करता हूँ। गुरुजी इसको जप करने में ध्यान नहीं लगता, मैंने देखा है ये हमेशा अपने फोन में रहता है, इधर रहता है, वो रहता है, अनेक प्रकार के व्याख्यान। तो एक दूसरी कंप्लेनिंग क्रिटिसिज्म चलता रहा। तो कल्याणदास कहते हैं, गुरु जी मैं पीने के लिए तैयार हूं। सारे बोले कि अच्छा है, इसी कारण सारी दिक्कत है, मर जाए तो अच्छा है। हाँ पी ले पी ले पी ले पी ले, सबने उसको बढ़ावा दिया। बोला ठीक है गुरु जी मैं पीऊंगा और पीने के बाद मैं शरीर त्याग दूंगा। बोले कल्याणदास तुम मर गए तो मुझे जिंदा क्यों रखना चाहते हो? बोले हम आपको इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि मैं तो गवार हूं, मुझसे जीवन किसी का परिवर्तित होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा जीवित रह गए तो हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित कर देंगे, आपके अंदर ये शक्ति है। आचरण से प्रचार करना चाहिए, आचरण से, गुरु जी आपका आचरण ऐसा है आप प्रचार कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे पीना प्रारंभ किया और पीते 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 सब देख रहे थे, ऐसे अचंभित होकर बड़ी बड़ी आंखों को देख रहे, पी रहा है क्या कर रहा है। और पीते 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 क्या हुआ, आधा जब वो पी लिया तो कल्याण दास मुंह पर करके कहता है, गुरु जी मेरी विद्या के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे लगता है मवाद जो होता है, पीप जो होता है, पस जो होता है, वो नमकीन खट्टा कड़वा होता है, लेकिन इसमें से तो मीठा स्वाद आ रहा है। तो है ना गुरुजी, बोले क्योंकि ये फोड़ा नहीं है और अपनी धोती को हटाया और अंदर से दिखाया, बोले ये आम है, आम तो मीठा ही होता है। सारे शिष्यों का गर्दन मुरझा गया कि गुरुजी हमारा क्या कर रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, आपको कितनी शरणागति। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए मरने को तैयार हो जाता है वो व्यक्ति सच मायने में एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा, भक्त बन पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के आप जीवन में देखें, जितने भी उनके शिष्य हैं, हम बोलते हैं प्रभुपाद शिष्यों की बात अलग है, वो बात अलग इसलिए है क्योंकि वो अपने गुरु के लिए प्राण त्यागने को तैयार थे। किसी व्यक्ति को बोल दिया जाइए जरा 100 किलोमीटर पर लेक्चर देने जाना है, वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देने जाए, हाँ 100 किलोमीटर जाऊंगा आऊंगा थक जाऊंगा, मेरी पीठ का क्या होगा। गुरु का आदेश अथॉरिटी के माध्यम से मिला, क्या दिक्कत है, नहीं जाएगा, अपना अपना ख्याल रखेगा। और जो व्यक्ति ये ख्याल नहीं रखता वही अपनी सत इंद्रियों के प्रति उन्मुख हो पाएगा और उसकी सत इंद्रियां जागृत होंगी और वो व्यक्ति सीधा भगवत धाम में प्रवेश करेगा, झुक जाएगा, और छोटा सा गेट है वहां से झुक के ही भगवान के धाम में विस्तार हो जाएगा, वापस पुनः अपने स्वरूप में व्यक्ति पहुंचेगा। लेकिन जो व्यक्ति ह्यूमिलिटी नहीं लेता है, गोपाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं, पे द प्राइस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, सहनशीलता और विनम्रता का पैसा देते रहो, भक्ति में आप अग्रसर होते रहो। ये दो है ना, हर चीज के प्रीमियम पे करने पड़ते हैं, विनम्रता और सहनशीलता। लेकिन हर एक व्यक्ति को हम देखते हैं इतना सारा प्रॉब्लम होता है, कई कई जगह पे प्रचार करने जाते हैं तो वहां पर भक्त कहते हैं आपको पता है हमारे यहाँ क्या क्या चल रहा है, हमारे मंदिर में ऐसा चल रहा है। तो बहुत ही अजीब सी बात है, जो भी चल रहा है वो चल रहा है भगवान की इच्छा से। हमारे लिए क्या है कि हम सभी भक्तों के प्रति ऋणी हों जिनके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे वैष्णवों की कृपा लेना। कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये मेरे कारण हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है इसे पार कर पाना। तो वो तभी हो पाएगा जब हम अपनी इंद्रियों से अम्बरीश महाराज की तरह एक एक इंद्री भगवान की सेवा में लगा दें। क्या करते हैं वो, श्रुत्रिम चक्रार अच्युत सत कदा उदय, उनके कान सदा अच्युत भगवान की सत कथाओं को सुनने में लगे रहते हैं, सत कथा को सुनने में लगे रहते हैं। और कई लोग तो बोलते हैं हमारे ना बड़ा बिजी चल रहा है, 2 दिन से हियरिंग ही नहीं हो पाई। तो यहां पर क्या बोला, श्रुत्रिम, जिसके कान सदा सत कथा उदय करने में लगे रहते हैं, सत कथाओं को श्रवण करने में। मुकुंद लिंगाले दर्शनम दृशो, जिसकी आंखें सदा भगवान मुकुंद के, कृष्ण के मुक्ति दाता एक मुकुंद, मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान, उन मुकुंद भगवान, उन कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए समय नहीं होता हमारे पास। अगर घर पे ही रहता है कोई व्यक्ति और मंदिर के पास नहीं है तो घर पे ही कर ले। हितवंश गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे लेक्चर में कि आजकल तो इंटरनेट है, आप कई सारे विग्रहों के दर्शन मोबाइल में कर सकते हो, है ना। बोले जी आज हम वृंदावन के दर्शन करेंगे, आज हम बॉम्बे के राधा रास बिहारी के करेंगे, आज राधा श्याम सुंदर, आज रुक्मणी द्वारकाधीश द्वारका मंदिर के, आज हम राधा गोविंद के दर्शन करेंगे, आज इसके इसके अमेरिका, पूरे विश्व में सभी जगह लाइव दर्शन मैक्सिमम जगह से आते हैं। अपने, लेकिन दर्शन की चाह तो इतने सारे वीडियो इधर उधर फॉरवर्ड व्हाट्सएप सब करते हैं, कभी मुकुंद लिंगालय दर्शनम दृशो, भगवान के लिंग जो जी शरीर है विग्रह उसका दर्शन ध्यान पूर्वक नीचे से ऊपर ऊपर से, क्या क्या पहना, आज किस रंग के वस्त्र दर्शन किए थे, क्या अंगूठी पहनी थी भगवान ने, आज पुजारी ने क्या सेवा करी, और उस पुजारी को धन्यवाद दें, प्रभु आज आपने कितना सुंदर दर्शन दिलाया भगवान का, भगवान के आप कितने सुंदर भक्त हैं, उसको प्रेरणादायक धन्यवाद देना, ये सारी ये भक्तिमय अंग है हमारे, पर हम अपनी सेवाओं में इतना बिजी होते हैं इस सबसे हमको कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए कृपाएं कम होती रहती हैं, अपराध बढ़ते रहते हैं और फिर मन लगना बंद हो जाता है। व्यक्ति कहता है बहुत दिन हो गए अभी भक्ति में मन नहीं लगता है, पहले जैसा उत्साह कम होता जा रहा है, उत्साह कम होने का कारण है हम ये भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर रहे। और आगे क्या है, तद्वृत्त गात स्पर्श अंग संगम, कृष्ण के सेवकों के शरीर का स्पर्श करना, जिस भक्त से मिलो उससे क्या करना चाहिए, अलिंगन, तो अपने से नीचे वाले भक्त को भी अलिंगन करें, अपने साथ वाले का भी अलिंगन करें, और अपने से सीनियर डिवोटी से चाहें कि उनको प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से अगर हम कर पाएंगे तो फिर व्यक्ति का क्या होगा, शरीर की इंद्रियां शुद्ध होना प्रारंभ करेंगे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और उसको ग्रहण इंद्रियां जो है इसकी सूंघने वाली इंद्रियों से ये भगवान के पुष्प को सूंघना चाहिए, जितना अधिक वो सूंघेगा, तुलसी का पत्र सूंघ करके चतुर कुमार निराकारवादी से सकारवादी बन गए, भगवान के प्रेरणादायक शिष्य बन गए, चतुर कुमार रात दिन भजन करते हैं कथा करते हैं, और पहले कुछ नहीं करते थे वो, भगवान की जब वो मिलने के लिए वैकुंठ गए और भगवान अपने गरुण पर बैठ करके नीचे उतरे तो उनके पैरों के अंदर जो चंदन तुलसी चढ़ाया था उसकी मकरंद जब उड़ी ऊपर की ओर उनकी नाक में स्पर्श ग्रहणम, जैसे ग्रहण किया तुरंत वो सकारवादी निराकारवादी से निर्विशेषवादी से सकारवादी बन गए, ध्यान योग से भक्ति योग में आ गए, और इतना आ गए, इतना आ गए कि चारों के चारों सदा भागवत कथा का क्या करते रहते हैं, व्याख्यान करते रहते हैं, एक बोलता है तीन सुनते, फिर एक बोलता है तीन सुनते, तो एक बार घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे कथा कर रहे हैं, कहीं भी चलते रहते हैं, विचरण करते हैं, प्रचार करते हैं, और योग बल से अपने शरीर को चतुष कुमारों ने भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने 5 वर्ष का ही बनाया हुआ है, कभी उनका वो जो साइज है वो 5 वर्ष से ऊपर नहीं गया, हमेशा कोमर अवस्था में, कभी पौगंड में प्रवेश ही नहीं किया, ऐसे कोमर अवस्था में रहने वाले ये 5 पहुंच गए शिव जी के कैलाश पर्वत में। पार्वती ने देखा कि कुछ 4 नंगे बच्चे चले आ रहे हैं, उन्होंने शराब दे दिया, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती है, शिवलिंग शिव का दर्शन करने, शिवालय का दर्शन करने आए हो, शिव का दर्शन करने आए हो और कपड़े पहन के नहीं आए हो, निर्वस्त्र आए हो, तो ये भी एक चीज है, भगवान का दर्शन करने में निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। जैसे हम कभी कभी घर पे होते हैं और घर में कोई ऑल्टर है हमारा भगवान का, तो उसके सामने कई भक्त ऊपर कपड़े चेंज करते हैं या ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ इधर चादर डालें या कुछ शॉल डालें, जो भी डालना है कुछ ना कुछ ऊपर होना चाहिए, निर्वस्त्र रूप में भगवान का दर्शन अपराध है। तो उन्होंने कहा निर्वस्त्र रूप में तुम यहां चले आए हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कहां जाओ, ऊंट बन जाओ, ऊंट होता है ना जो कि मुंह उठाया और कहीं भी घुस गया, ये तो लंबा मुंह होता है इसका, बोले ऊंट की तरह मुंह उठा के घुस गए हो, ऊंट बन जाओ, तो उन्होंने श्राप दे दिया, 4 ऊंट बन गए, ऊंट बन करके कैलाश के नीचे चले गए और वहां इत्मीनान से सूखे पत्ते खा रहे हैं और भागवत कथा चल रही है, एक बोल रहा है तीन सुन रहे, फिर एक बोल रहा है तीन सुन। शिव जी को पता चला, नंदी गणों ने बताया आज पार्वती मैया ने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, चतुष कुमारों को श्राप दे दिया, कहा नग्न अवस्था में घूमते हो, तो शिव जी बोले क्या किया, बड़े भाई हैं तुम्हारे, जेठ जी लगते हैं, बड़े भाई हैं, क्यों, मैं सबसे पहले मानस पुत्र वही बने थे, मैं तो बाद में ब्रह्मा की भ्रगुटी से प्रकट हुआ, तो आपने ये क्या कर दिया, उनको श्राप दिया, आपसे अपराध हो गया, जाइए माफी मांगिए। पार्वती जी गई क्षमा याचना करने के लिए, चतुष कुमार बैठे थे, कथा चल रही थी भागवत पुराण, तो उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, कहा नहीं नहीं मैया आपका आशीर्वाद बन गया ये, बोले क्यों, बोले जब हम चतुष कुमार उस छोटे ब्राह्मण शरीर में थे तो हमको रोज स्नान गायत्री अनेक चीज संध्या करनी होती थी, लेकिन इस अवस्था में नहाना है न धोना है, 6 दिन का पानी लोड कर लेते, 6 दिन कथा चलती रहती है, तो ये आपने हमें बहुत आशीर्वाद दे दिया, हमको और आवश्यकता नहीं अधिक। तो इस प्रकार से देखिए कि सत कथा उदय के प्रति उनका भगवान के भागवत कथा के प्रति कितना शरणागति है। आगे कहा गया है, श्रीमत तुलसाय रसनाम तत् अर्पिते पदो, भगवान के तुलसी चढ़ाई जाए और उस तुलसी को रोज एक तुलसी पत्र कम से कम भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, घर पर भी हो अगर लेमिनेशन भी हो तो कृष्ण चरणों में एक तुलसी अर्पित करना चाहिए। हरेर क्षेत्र पद अनुसर्पण, और अपना क्या करना चाहिए, भगवान के मंदिर और वृंदावन आदियों पे अपने ये जो सर है इसको रखना चाहिए, इधर जाना चाहिए और अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए रोज मंदिर या किसी देवालय में स्थान में जाना चाहिए। शिर ऋषिकेश अभिवंदना, और अपने सिर का क्या करना चाहिए, भगवान के प्रणाम में खड़े होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेट करके करना चाहिए जब तक शरीर हमारा साथ दे रहा है। इस प्रकार से अनेक अनेक चीजें जब अम्बरीश महाराज ने करी तो अम्बरीश महाराज की इंद्रियां शुद्ध हो गईं। कितनी शुद्ध हो गईं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, इतनी शुद्ध हो गईं जो एक योग बल का तपस्वी भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जिनका उदाहरण है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आए और उनको पता चला कि इन्होंने क्या कर दिया है, पहले से ही एकादशी पारण कर लिया है जल पी करके। उनको बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया जबकि इतने बड़े तपस्वी थे। कहते हैं मधुवन, ये जो राजा थे अम्बरीश मथुरा में उस समय रहा करते थे, और मधुवन में दुर्वासा ऋषि थे यमुना के उस पार, मधुवन से जहां पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की वहां से चल करके यमुना पार करके आना था, बीच में यमुना पड़ी तो अपनी आते इंटेस्टाइन को निकाल लेते थे बाहर, यमुना नदी में धोते थे, वापस लगा लेते थे हाथ में। कहते हैं ना कुछ योग क्रिया करनी पड़ेगी जिससे हमारी इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए। सिर्फ पानी 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 पियो, फिर क्या होगा, सिर्फ पानी पीने से क्या होगा, एक समय सारी इंटेस्टाइन क्लियर हो जाएंगी। पूरा दिन कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी, गर्म पानी नमक डाल के पीते रहो पीते रहो पीते, तो उससे इंटेस्टाइन क्लियर हो जाएंगे। ऐसे योग करते हैं आज, लेकिन वो कैसे योग करते थे, आते बाहर निकाल लेते थे, धोते थे यमुना नदी में, वापिस सेट कर लेते थे। इतने बड़े योगी थे, इतने शक्तिशाली व्यक्ति। अम्बरीश महाराज सिर्फ करो मंदिर मार्जन, बस ऐसे मंदिर मार्जन करते हैं, तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं, नाम जप करते, ध्यान से भागवत सुनते, भागवत बोलते, बस कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं। ऐसे व्यक्ति के सामने जब पहुंचे अम्बरीश महाराज के सामने, उनको पता चला इन्होंने क्या कर दिया है, पारण कर लिया है पानी पी करके, गुस्सा आया, अपने बाल फेंक करके एक उन्होंने राक्षस उत्पन्न कर दिया, और वो कृत्या ने क्या किया, त्रिशूल लेकर उनके पीछे भागे। जब मारने के लिए भागे तो क्या किए, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े मार दो, क्योंकि किसको मारोगे, शरीर को, मैं कौन हूं, आत्मा, सत इंद्रियां उदय हो चुकी है, जरूरत नहीं है इसकी रक्षा करने की। ऐसे खड़े हो उसी जगह पर, एक ही स्थान पे, और कई वर्ष तक खड़े रहे, जब तक दुर्वासा ऋषि ऊपर गए। दुर्वासा ऋषि क्या घबरा गए, कृत्या भी मर गई, दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र आ गया ऑटोमेटिक, है ना, बिना कुछ किए ऑटोमेटिक प्रकट हो गया दुर्वासा ऋषि का, वो जो आया ऊपर सुदर्शन चक्र, भागे नीचे के लोगों में, ऊपर के लोगों में, सभी स्थानों में भाग रहे। फिर बाद में ब्रह्मा जी तक पहुंच गए, ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, ये तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, मैं स्वयं उनका दास हूं, जाओ आगे। शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो खुद हरि का दास हूं। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो ये मैं मानता हूं कि सुदर्शन मेरा है, लेकिन मैंने सुदर्शन को आदेश दिया है भक्त अपराध जहां हो वहां अपने आप पहुंच जाया करो अपने आप। और दुर्वासा ऋषि के पीछे मैं थोड़ी, अहम भक्ता पराधीनो, मेरे भक्तों के मैं पराधीन हूं, वैसे तो मैं स्वराट स्वतंत्र हूं, लेकिन जब मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं उनके ऊपर परतंत्र हो जाता हूं, निर्भर हो जाता हूं। आपने अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, उसकी क्षमा भी याचना वही कर सकते। तो फिर दुर्वासा ऋषि आकर के श्लोक बोलते हैं कि मैं कैसा योगी हूं, मैंने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी है, कई युगों से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मैं घबरा करके अपने इस शरीर को बचाने के लिए अनेकों लोकों में अनेकों ब्रह्मांडों में भागा, परंतु आप अपने शरीर को बचाने के लिए एक ही स्थान पर खड़े रहे, है कि नहीं, कितनी भक्ति की शक्ति है, बहुत ऊंची भक्ति की शक्ति है। इसीलिए यहां पर देवहूति कह रही है, हे प्रभु मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूं। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, अब हम इस इंद्रियों के एंगेजमेंट से सब जगह विक्षोभ हो चुका है, हम थक गए हैं संसारिक कार्य कर करके। इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं, और मैं अंधकार में गिर गई हूं। ग्रस्त जीवन को प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रह अंधकूपम, ये घर कैसा है, अंधा कुआ है। तो मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इन सत इंद्रियों को उदय करने का रास्ता दिखाएं। इसलिए लिखा गया असत इंद्रिया तर्षणात्, तर्षणात् मतलब व्यक्ति अधिक देर तक इन इंद्रियों की उत्तेजनाओं में लगा रहता है, तर्षणा। तो कई प्रकार की है, एक सुप्त अवस्था में इंद्रियां हैं लेकिन कभी भी वो जागृत हो सकती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सदा भक्तों का संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और वैष्णवों के प्रति अपराध करने की जो ये प्रवृत्ति है अगर हो रहा है तो उसमें क्षमा याचना करें, बार बार गिल्टी कॉन्शियस हो। जितना अधिक हम ये अपने आप को पतित मानेंगे, गिरा हुआ मानेंगे, एकदम निकृष्ट मानेंगे, उतनी जल्दी हमारा भक्ति की जो असत इंद्रियां वो बंद होंगी और सत इंद्रियों का उदय होगा। हरे कृष्णा, श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे।